الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورہ یوسف کی تفسیر پڑھتے ہیں معرف القرآن جلد نمبر 5 سے، اور اس میں بس آخری آخری چند آیات چل رہی ہیں، 102 سے لے کر کے 109 سورہ یوسف کی آیات کے ہم معارف و مسائل پڑھ رہے تھے آخری کلاس میں، پیج نمبر 156 پر تھے تقریباً آخر میں، کہ جو آخری بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ اللہ وہم مشرکون، یعنی ان میں جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لاتے ہیں وہ بھی شرک کے ساتھ لاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم قدرت وغیرہ اوصاف میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، جو سراسر ظلم اور جہل ہے. یعنی اللہ پر ایمان لانے سے یہاں پر کیا مراد لی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں کہ ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، بلکہ رازق ہے، یہ بھی مانتے تھے، اور بھی اس طرح کی چند صفات کو مانتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی، لیکن ساتھ ساتھ شرک کرتے تھے کہ بیٹا، بیٹی، پارٹنر، ایسوشیٹ اور نہ جانے کیا کیا نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے تھے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جو پکے ٹھکے حکم تھے ان کو توڑتے تھے. تو یہ سب کا سب جو ہے، چاہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، چاہے اللہ کے حکم کو توڑا جائے، یعنی اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے. نفس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی کیا مینیفیسٹیشن ہوتی ہے، کیا اظہار ہوتا ہے؟ کہ جب انسان اپنے نفس کا حکم مانتا ہے اور اللہ کا حکم توڑتا ہے، تو یہ نفس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں لحاظ سے، دونوں طریقوں سے شرک ہی ہوتا ہے. تو بہرحال نبی علیہ السلام نے جیسے بتایا ویسے یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے تھے، اس وجہ سے کافر ٹھہرائے. تو یہ بات ہم پڑھ کے پھر آگے بڑھتے ہیں. اگلی آیت جس کی تفسیر حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے لکھی ہے یہاں پر، وہ ہے قل. نبی علیہ السلام وہ حکم سے اس کی ابتدا فرمائی، قل کہہ دیجئے آپ، ہاذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے، آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے. ٹھیک ہے، یا اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو بتا دیجئے کہ میرا راستہ یہ ہے، یعنی مجھ تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے، اور وہ ایک ہی راستہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ وہی اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا راستہ ہے. ٹھیک ہے، آج کل تو سوشل میڈیا کے اوپر راستے بتائے جاتے ہیں نا، اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کو خوش کرنے والے راستے آج کل کہاں بتائے جاتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے اوپر. اور ہمارے بچے جو ہیں، ہماری نوجوان نسلیں جو ہیں، وہ ان کو پڑھتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پھر اپنا ایک نظریہ بنا دیتی ہیں جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا تھا اللہ کے بارے میں. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے کیا بتایا اللہ کے بارے میں، وہ نہیں پڑھتی، وہ نہیں معلوم کرتی ہماری نسلیں، بلکہ سوشل میڈیا پہ کسی نے کچھ لکھ دیا، کسی نے اپنی ٹویٹ بنا دی، یا پتہ نہیں آج کل ایکس بنا دی کہتے ہوں گے اس کو، ٹھیک ہے، کیونکہ ٹویٹر کا نام ایکس بن چکا ہے، کسی نے فیس بک کے اوپر کچھ لکھ دیا، کسی نے جو ہے وہ، ابھی مجھے آج ہی پتہ چلا کہ انسٹاگرام کے اوپر جو جو آتی ہیں نا وہ ان کو ریلز کہا جاتا ہے، تو کسی نے اپنی ریل کے اندر اللہ کے بارے میں کچھ لکھ دیا کہ اللہ ایسا ہے، اللہ ویسا ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی، اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا ہے. تو وہ جو ہے وہ ایک، آپ میں سے پتہ نہیں وہ کلاس میں ہیں کہ نہیں ہے، انہوں نے کافی لمبا لکھا، سوال لکھا، تو سوال اتنا کنفیوزڈ سوال تھا کہ میں نے اسے پوچھا کہ یہ سوال آپ کا ہے یا آپ نے کسی کسی کا سوال مجھے نقل کیا ہے، وہ آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں. تو انہوں نے بتایا میں نے جی انسٹاگرام کی ریل کے اوپر یہ سوال پڑھا تھا، ये बात पढ़ी थी मैंने, तो वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये सही है, क्योंकि जब से मैंने उसको पढ़ा है ना तो मैं यही सोचना शुरू हो गई हूँ। लेकिन कितना असर होता है इंसान के जहन के ऊपर, राइट? हम समझते हैं कि जी कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, इंसान के जहन के ऊपर एक बड़ा पावरफुल इम्पैक्ट होता है वो इन चीजों को पढ़ता है जब, राइट? तो उन्होंने पढ़ा क्या कि जी अल्लाह इतना बड़ा है, तो ये जो हम सुनते आ रहे हैं ना कि अल्लाह ताला किसी गुनाह की वजह से सजदे की तौफीक छीन लेता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, और अल्लाह ताला तो जो है वो इतना रहीम है करीम है, अल्लाह ताला किसी से सजदे की तौफीक कैसे छीन सकता है, और ये पता नहीं उल्टा सीधा ऊट पटांग, यानी डिनायल अपने ही बात का अगले जुमले में डिनाय डिनायल कर रहे हैं वो बंदा जिसने की वो रील लिखी थी, ठीक है ना, अपना ही उल्टा सीधा ऊट पटांग। मैंने उनको यही फिर बाद में समझाया कि क्या ऊट पटांग किस्म की जो है ना, ये लोगों के ईमान के साथ या तो जानबूझ के खेल रहा है ये शख्स जिसने ये सब कुछ लिखा है, या इसको कुछ पता नहीं है और बस ये शैतान के वसवसों की बुनियाद पर ये अल्लाह ताला के बारे में बातें लिख रहा है कि अल्लाह ताला ऐसे हैं अल्लाह ताला वैसे नहीं है। अल्लाह के बंदे तुम्हें क्या पता अल्लाह ताला कैसे हैं, मुझे क्या पता अल्लाह ताला कैसे हैं, राइट? मुझे क्या पता अल्लाह ताला जो है वो सबको माफ करने वाले हैं, सबको सजा देने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, दुश्मनी करने वाले हैं, किसी को जो है वो दोजख में फेंकने वाले हैं, किसी को जन्नत में, मुझे क्या पता ये सारी बातें? आपको पता है ये सारी बातें? आप अल्लाह ताला से पूछ करके आए हैं, आप अल्लाह ताला से मुलाकात करके आए हैं ये सारी बातें, या आपने अपनी अकल से सोचा कि भाई ऐसा होता है ऐसा नहीं होता, अल्लाह को ऐसा होना चाहिए अल्लाह को वैसा नहीं होना चाहिए? नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बारे में क्या बताया उसकी फिक्र नहीं, वो नहीं सीखना, बस अपनी अकल काफी है, वही की कोई हैसियत नहीं है हमारी जिंदगी में, इसी वजह से दीन का इल्म नहीं हासिल करना। सोशल मीडिया के ऊपर जाकर के जिसने जो लिख दिया, जिसने अब जो अपनी वीडियो बना दी, उसको जो है ना वो अपनी अकल के तराजू में तोलना शुरू कर दिया, ठीक है ना? तो भाई दीन है क्या? दीन तो यही सिर्फ और सिर्फ यही है ना कि अल्लाह ताला के बारे में जो नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है अल्लाह ताला वैसे हैं, अल्लाह ताला वैसे हैं जैसा नबी अलैहिस्सलाम ने बताया, ये नहीं कि जो मेरी अकल में आता जो मेरी समझ में आता है या जो मेरे मन को भाता अल्लाह वैसा है, ठीक है? तो यानी कुरान ये नबी अलैहिस्सलाम का दिया हुआ कलाम है ना, अल्लाह ताला का कलाम जो वाया नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचा है, हम कुरान को नहीं सीखना, कुरान में अल्लाह ताला ने अपने बारे में बताया, हम जुबान से कहते हैं जी अल्लाह का कलाम है, यानी ये कोई काफिर की तो बात नहीं कर रहे ना, हम तो दीनदार मुसलमान घरानों के बच्चों की बात कर रहे हैं, राइट? दीनदार घरानों के बच्चों की बात कर रहे हैं ना कि वो सोशल मीडिया पे जाकर के अल्लाह के बारे में पढ़ रहे होते हैं चीजें, राइट? कुरान मौजूद है अल्लाह का कलाम, जिसको के मानते भी हो तुम कि वो अल्लाह का कलाम है, लेकिन कुरान को नहीं सीखना। नबी अलैहिस्सलाम को मानते हो कि वो अल्लाह ताला के रसूल है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बारे में क्या बताया है उसकी कोई प्रायोरिटी नहीं, ठीक है? तो कुल हाजी सबीली, ये मेरा रास्ता है, ठीक है, जो कि अल्लाह तक पहुंचाने वाला रास्ता है, अदउ इलल्लाह, मैं दावत देता हूं अल्लाह की तरफ, जी उसके अलावा किसी और रास्ते से अल्लाह तक पहुंचने, इन्होंने सुन मैसेज लिखा हुआ है, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा कि डायरेक्ट मैसेज में चूंकि लिखा है कि अल्लाह ताला तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इसके अलावा कोई नहीं है, जी ऑफ कोर्स इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आगे इन्होंने लिखा बड़ी जबरदस्त और सही बात लिखी कि इसके अलावा किसी और रास्ते से अल्लाह तक पहुंचना कुफर है, नहीं अल्लाह तक पहुंचना तो मुमकिन ही नहीं है, ठीक है ना, किसी और रास्ते से अल्लाह तक पहुंचने को मुमकिन समझना कुफर है, ठीक है ना? पहुंच तो सकते नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर कोई ऐसा समझेगा कि मैं किसी और रास्ते से अल्लाह तक पहुंच सकता हूं नबी अलैहिस्सलाम के रास्ते के अलावा, तो ये कुफर है, ये कुफर है, ऐसा शख्स मुसलमान नहीं है, ठीक है? तो जैसे कहते हैं ना आजकल तो ये यूनिवर्सल रिलीजन है ना, आजकल चल रहा है यूनिवर्सल रिलीजन, हाँ जी सारे रास्ते अल्लाह तक पहुंचाने वाले रास्ते हैं, यानी यानी अच्छे खासे दीनदार लोग ना, जो यानी जो इबादतें कर रहे हैं, जो कि शक्लो सूरत भी जो है वो दीनदारों वाली बनाई हुई है, वो जब ऐसी बात कहें कि हाँ भाई सारे रास्ते अल्लाह तक पहुंचाने वाले रास्ते हैं, तो फिर उनका ये दाढ़ी टोपी बुरके इमामे पगड़ियां तिलावतें जितनी भी इबादतें सब सिफर है, सारी जीरो है, ठीक है ना? यही बात समझाने के लिए 19 दुरूस के अंदर, बल्कि 20 दुरूस के अंदर ईमान और कुफर वाली किताब हमने पढ़ी थी। बहरहाल, तो कुल हाजही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन तबानी। ठीक है, मैं बुलाता हूं अल्लाह की तरफ इस रास्ते की तरफ, अला बसीरा, अला बसीरा बसीरत के साथ, अना मैं भी, व मन तबानी और वो भी जिसने मेरी इत्तबा करी, व सुबहान अल्लाह और अल्लाह ताला पाक है हर किस्म के नुक्स से, हर किस्म की कोताही से, हर किस्म की गलती से, हर किस्म की मिसकैलकुलेशन से, कि जैसे नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला नकले कुफर कुफर नबाशद, के वही तो भेजनी थी अली के पास, गलती से जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेज दी। ये क्या है? ये सुबहान अल्लाह की नफी है, ये कुफर है, ठीक है, और इस किस्म की कोई भी और बात। तो सुबहान अल्लाह वमा अना मिनल मुशरिकीन, और नहीं हूं मैं मुशरिकों में से अल्लाह ताला के साथ, ना तो मैं किसी जाहिर को शरीक ठहराता हूँ, ना मैं बातिन को शरीक ठहराता हूँ, यानी जो अंदर छुपा हुआ है ना उसको भी मैं अल्लाह ताला के साथ शरीक नहीं ठहराता। तो इसकी तफसीर में हजरत लिखते हैं कि यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों से कह दें कि तुम मानो या ना मानो, ये मैं तो डिलीवर कर रहा हूँ ना, मैं तो यहाँ पे पैगाम पहुंचाने के लिए आया हूँ, तो तुम मानो या ना मानो ये तुम्हारी मर्जी है और अल्लाह ताला की तौफीक है, जो अल्लाह ताला तुम्हारे बारे में जानते हैं कि तुमने मानना है कि तुमने नहीं मानना है। मेरा तो यही तरीका और मसलक है, मेरा तो रास्ता, मसलक क्या होता है, सुलूक का रास्ता, बल्कि सुलूक रास्ते ही को कहते हैं, और मसलक उन रास्ते, ठीक है, रास्ते पे चलना, सुलूक इज इक्वल टू रास्ते पे चलना, ये मस्तर है, ठीक है। तो मसलक जो है वो इसका इस्म ज़र्फ है, यानी वो रास्ता जिसके ऊपर चला जाता है। तो मेरा तो यही तरीका, तरीक भी रास्ते को ही कहते हैं और मसलक भी रास्ते को कहते हैं, है कि लोगों को बसीरत और यकीन के साथ अल्लाह की तरफ दावत देता रहूं, मैं भी और वो लोग भी जो मेरा इत्तेबा करने वाले हैं। मतलब ये है कि मेरी ये दावत किसी सरसरी नजर पर मबनी नहीं है, सरसरी नजर यानी सुपरफिशियल, बस मैंने किसी चीज को देख लिया और मुझे वो अच्छी लग गई, मैंने उसको उठा करके अपना रास्ता कहना शुरू कर दिया, बल्कि पूरी बसीरत और अक्ल व हिकमत का समरा है, यानी यानी मैं इसको गहराई से इस बात को समझता हूं, ठीक है ना, नॉट लाइक अस के यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देख ली, अच्छी लग गई, लोगों को उसकी तरफ बुलाना शुरू कर दिया, अंदर कुछ पता नहीं है कि ये कहाँ से आई है, ये जो बात कर रहा है यूट्यूब के ऊपर बैकग्राउंड क्या है इसकी, जब आपकी अपनी है तो फिर आपका मन इज इक्वल टू नफ्स, और नफ्स इज बीइंग ड्रिवन बाय द शैतान। तो असल में शैतान आपको एक बुरी बात, एक गलत बात जो है वो बड़ी मुजयन करके पेश कर रहा है, जो कि शैतान की जॉब्स में से एक जॉब है, जॉब रोल है ये शैतान का। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी बंदे को जो है वो अपनी कंपनी के अंदर हायर करें, अपने अपनी दुकान के अंदर हायर करें, तो आप उसको कुछ जॉब रोल्स देते हैं कि भाई तुम्हारा जॉब रोल ये है कि तुमने सुबह को आकर के दफ्तर को खोलना है, और तुम्हारे जॉब रोल के अंदर ये भी दाखिल है कि तुमने जो है ना वो कस्टमर्स को रिसीव करना है, तुम्हारे जॉब रोल में ये भी दाखिल है कि तुमने जो है ना वो हमारी प्रोडक्ट की जो है वो सेल्स करनी है, तो ये जॉब रोल्स है ना, अब उस बंदे ने ये सारे जॉब रोल्स प्ले करनी है, शैतान की भी जॉब रोल्स है ना, एक जॉब रोल ये है कि वो वसवसे डालता है, ठीक है ना, वसवसे, ये एक जॉब रोल है, और दूसरा और बड़ा जॉब रोल उसका क्या है, ठीक है, और शैतानों में मुख्तलिफ भी हैं, मुख्तलिफ यानी पर्सन्स भी हैं, ठीक है, एक पर्सन ऑफ शैतान जो है ना उसका वसवसे डालना, उसका नाम खन्नास है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरि नासि मिनल जिन्नति वन्नास, खन्नास का काम है वसवसे डालना, लेकिन हर जिन का काम जरूरी नहीं है, हर शैतान का काम वसवसे डालना ही हो, बल्कि मुज़य्यन, ज़य्यन लहुमुश शैतानु अमालहुम, राइट, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सब कुछ हमें बता दिया कि ये मुज़य्यन करता है तुम्हारे बुरे आमाल को अच्छा बनाता है, तो अब YouTube के ऊपर आप एक गुमराही की बात सुन रहे हैं, एक गलत बात बिल्कुल सुन रहे हैं, और वो आपको भा रही है, तो भाने का मतलब ये थोड़ी है कि वो सही बात भी है। ठीक है, तो शैतान जो है मुजयन करके बना देता है, पेश कर देता है, और बड़ी अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, और समझते हैं कि हाँ जी जो मुझे अच्छा लग रहा है वही सही होना जरूरी है, और जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा वो गलत होना जरूरी है। ठीक है ना, तो ये तो नफ्स परस्ती और शैतान परस्ती, इसी को तो कहते हैं। तो मैंने ऐसे नहीं इस रास्ते को जो है ना वो आगे इसकी दावत देनी शुरू करी, आई नो इन साइड आउट जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नबी अलैहिस्सलाम ऐसे पहचानते थे, ऐसे जानते थे कि जैसे कोई अपनी जात को जानता है, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नबी अलैहिस्सलाम के साथ निस्बते इत्तेहादी रखते थे, निस्बते इत्तेहादी। आजकल जो हमारी खुलफाए राशिदीन की सीरत क्लास चल रही है उसके अंदर हम यही बता रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत इत्तेहादी थी, सारी चीजें सिमिलर हो गई थी दोनों की, सिवाय वही आने के, बाकी सब चीज जो है वो सिमिलर थी, मुख्तलिफ तौजीहात के साथ ऑफ कोर्स। ठीक है ना, यही निस्बत इत्तेहादी नबी अलैहिस्सलाम और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के दरमियान थी। ठीक है, तो पूरी बसीरत और अक्ल हिकमत और का ये समरा था, बस एक रैंडम चॉइस नहीं थी, बस एक सुपरफिशियल किस्म का डिसीजन नहीं था ये। इस दावत व बसीरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुत्तबईन और पैरुओं को भी शामिल फरमाया। ठीक है, यानी जिन्होंने आपसे वसल्लम की इत्तबा करी, जिन्होंने पैरोकारी करी, वो एक ही बात है, पैरोकारी करना इत्तबा करना, तो नहीं ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है। उन्होंने लिखा कि जी अगर जब अबू बकर सिद्दीक को नबी अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत इत्तेहादी थी तो, और नबी अलैहिस्सलाम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत इत्तेहादी थी, तो एक्स इक्वल्स टू वाई, वाई इक्वल्स टू जी, तो इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू जी। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली मैथमेटिकल तो ही नहीं, इसी वजह से मैंने एक लफ्ज कहा था जो कि आपने शायद मिस कर दिया, मुख्तलिफ तौजीहात के साथ। ठीक है ना, तो वो तौजीहात हैं, ऐसा भी नहीं है कि बस यानी सारे बॉडी सेल्स जो हैं वो नबी अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के मैच करना शुरू हो गए थे, और हर चीज़ जो है वो मैच हो गई थी, हर चीज़ एक हो गई थी, और बिल्कुल सब कोई ऐसा नहीं है। ठीक है ना, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे का नाम जो है वो अब्दुलरहमान था, नबी अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम अब्दुलरहमान तो नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम जो है वो आयशा और जैनब और इतने सारे दूसरे हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी का नाम तो ऐसा कोई भी नहीं था। ठीक है, वो तो रमला या दूसरा दूसरा नाम था, दो बीवियां थी वो कैसे, और नबी अलैहिस्सलाम की तो 11 बीवियां थी, तो निस्बत इत्तेहादी का मतलब है कि जी उनकी 11 बीवियां तो उनकी भी 11 बीवियां, ये मतलब तो नहीं है ना निस्बत इत्तेहादी का ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जी, मैथमेटिक्स नहीं चलती ना जगह पे। एनीवे, तो फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मुत्तबईन और पैरुओं को भी शामिल फरमाया इसके अंदर, यानी वो भी इस काम में नबी अलैहिस्सलाम का हाथ बटाने वाले। ये नहीं कहा कि नहीं तुम चुप करके बैठ जाओ, मुराकबे करो बैठ करके, मैं जो हूँ वो दावत करूंगा, तुम मुराकबे करो, तुम जो है वो मस्जिद नबी के अंदर बैठ करके, या तुम काबतुल्ला में बैठ करके, या तुम जो है वो दार अरकम में बैठ करके मुसल्ले पे नमाज पढ़ो, और मैं जाकर के दावत तबलीग करूंगा। नहीं, सब शामिल थे इसके अंदर। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि इससे मुराद सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हैं, जो उलूम रिसालत के खजाने और खुदावंद सुबहानहु व तआला के सिपाही हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इस उम्मत के बेहतरीन अफराद हैं, जिनके कुलूब पाक और इल्म गहरा है, जिनके कुलूब पाक और इल्म गहरा है। ठीक है, यानी ये जो काम नबी अलैहिस्सलाम वाला काम जो सहाबा कराम ने भी किया ना, ये बस ऐसे ही नहीं कर दिया, बल्कि इसके लिए ये लोग तैयार हुए, इन्होंने अपने आप को पेश भी किया, और इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को अपने ऊपर लागू भी किया, नाफिज भी किया। ठीक है ना, अपने आप को इस्लाह के लिए पेश भी किया कि नबी अलैहिस्सलाम आप हमारे अंदर तसर्रुफ करें, आप हमें बताएं ये करना है तो हम वो करेंगे, आप हमें मना करने ये करने से तो हम इससे भी रुक जाएंगे। ठीक है ना, अगर हमसे कभी गलती हो गई और आप हमारी गलती की इसलाह करेंगे तो हम फौरन आपकी इसलाह को कबूल करेंगे और हम उस गलती को ठीक कर लेंगे, ये कहते हैं पेश करना अपने आप। ठीक है, तो सहाबे कराम ऐसे ही नहीं दाई बन गए, ऐसे ही नहीं जो है ना वो बेहतरीन इंसान बन गए, बल्कि वो बेहतरीन मुरीद बने, बेहतरीन सालिक बने, बेहतरीन शागिर्द बने, तब कहीं जाकर के वो बेहतरीन इंसान बने ना। ठीक है, तो कुलूब पाक और इल्म गहरा, ये बड़े की वर्ड्स हैं। ये कुलूब का पाक होना और इल्म का गहरा होना, इनके बारे में भी बात करते हैं इंशाल्लाह। तकल्लुफ का उनमें नाम नहीं, तकल्लुफ का उनमें नाम नहीं, यानी ये तकल्लुफ वैसे तो जैसे हम कहते हैं ना, तकल्लुफ ना करें, या फिर जब किसी के घर जाते हैं मेहमान बन करके तो उसने खाना रखा सामने, तो अब हम जो है ना वो झूठ और भूख को आपस में जमा कर लेते हैं, इसको कहते हैं तकल्लुफ करना, यानी भूख तो लग रही है लेकिन झूठ मूठ का जो है ना कम खा रहे हैं, ठीक है ना, अपनी डिसेंसी दिखाने के लिए कम खा रहे हैं, हालांकि भूख झूठ लगी, वो झूठ भूख लगी हुई है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक थे गलती, गलती है तो सहाबा ने सीखा ना गलतियों से, तो सहाबी से गलती हुई, उन्होंने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं भूख नहीं है, नबी फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया झूठ और भूख को इकट्ठा ना कर, उन्होंने इसलाह कर ली, तौबा कर ली अपनी गलती से। सहाबी सहाबियों की यही तो शान थी, गलती होती थी तौबा करते थे, नबी अलैहिस्सलाम उनको करेक्ट करते थे, भाई देखें अगर वो पैदाइशी तौर पर परफेक्ट होते, गलती ना करते, तो नबी अलैहिस्सलाम की रेलेवेंस क्या थी, नबी अलैहिस्सलाम पर इस दुनिया में किस लिए आए, जब सहाबा कराम पहले से बने बनाए थे। जैसे कोई शागिर्द हो उसको पहले से सब कुछ आता हो तो फिर उस्ताद की तो कोई कमाल नहीं हुआ ना, फिर उस्ताद ने क्या किया जब शागिर्द को सब कुछ पहले से आता था। डॉक्टर ने क्या किया अगर मरीज पहले से सेहतमंद था, तो डॉक्टर ने क्या किया फिर, राइट भाई, मरीज तो बीमार था, डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने इलाज किया, अल्लाह ताला ने उसके इलाज में शिफा दे दी, मरीज जो है वो भला चंगा हो गया, सेहतमंद हो गया, तब डॉक्टर की बड़ाई होती है ना, ठीक है ना। तो अच्छा, अच्छा मरीज कौन, जिसने अच्छे से अपना इलाज करवाया, अच्छा शागिर्द कौन, जिसने अच्छे से अपनी जहालत को दूर किया, इल्म हासिल किया, वो अच्छा शागिर्द होता है, ना कि वो जो कि पैदाइशी तौर पे जो है वो अल्लामा साहब थे जिन्होंने कहा जी मुझे तो सब कुछ आता है मैं आपसे क्या पढ़ूं, ठीक है ना, वो तो अच्छा शागिर्द नहीं कहलाएगा ना। तो नबी अलैहिस्सलाम इस्लाह फरमाते थे उनकी गलतियों की, उनकी कोताहियों की, और वो फिर बेहतरीन अंदाज में अपनी इस्लाह करते थे, ये उनका कमाल है सहाबा कराम का। तो तकल्लुफ का उनमें नाम नहीं, वो ये जो हमारी तरह की डेलिकेसीज होती है ना, छुई मुई, इसको छुई मुई भी कहते हैं, टच मी नॉट वाली जो तबीयत होती है, प्लीज डोंट टच मी, मैं तो नाराज हो जाऊंगी, मैं नाराज हो जाऊंगा, और जरा तुमने ऐसे नहीं ऐसी टेढ़ी आंखों से मुझे देख लिया तो उसके बाद तो मैंने जो है ना वो सारा दुनिया का कारोबार बंद कर देना है, ठीक है ना, कोई बात जो है वो मेरी मिजाज के खिलाफ हो गई, मैंने तो ट्रेन उधर ही खड़ी कर देनी है। वो हमारे हजरत जो है ना वो मिसाल से समझाते हैं कि एक होती है तेज गाम, पाकिस्तान में वो रेलगाड़ियां होती हैं, तो एक का नाम था तेज गाम, तो तेज गाम जो होती है ना वो हर स्टेशन पे रुकती नहीं है, बल्कि वो चंद डेजिग्नेटेड स्टेशन होते हैं और वो तेज दौड़ती है और मंजिल पे पहुंच जाती है। लाहौर से किसी को पिंडी जाना है, वो तेज जो है ना वो एक दिन के अंदर पिंडी पहुंचा देगी, हर जगह कोई थोड़ी खड़ी हो जाती है, ठीक है, जबकि मालगाड़ी होती है या जो है वो सुस्त गाम नाम पता नहीं कौन सी वो होती है दूसरी जो है ना, अब हम जिस जमाने में छोटे थे उस जमाने में ट्रेन में सफर किया करता, अब तो पता नहीं बहुत सारी ट्रेन और चल गई होंगी, तो एक होती है ट्रेन जो है ना जो कि हर स्टेशन पे खड़ी हो जाती है, फिर जो है ना वहां से आराम से चलती है, फिर दूसरे स्टेशन में खड़ी हो जाती है, फिर चलती है, फिर स्टेशन में खड़ी हो जाती है, ये मंजिल तक पहुंचते पहुंचते रुला देती है अपने मुसाफिरों को। तो हमारा जो तकल्लुफ वाला जो स्टाइल है ना वो यही है कि हम रुला देते हैं अगले बंदे को अपने एटीट्यूड से, जहां कोई मसला खराब उधर ही लफड़ा डाल दिया, उधर ही जो है ना वो पंजाबी में कहते हैं ना रोला डाल दिया, ठीक है ना, उधर ही जो है ना वो मुंह बसोर लिया, उधर ही जो है वो नाराज हो गए, उधर ही जो है वो गुस्सा हो गए, उधर ही जो है वो ताल्लुक तोड़ लिया, ये ऐसे ही है कि जैसे आप स्टेशन पे खड़े हो गए, बस अब नहीं चलना जी आगे, गाड़ी को रोक के खड़े हो, ठीक है ना। तो ये सब तकल्लुफ जो होते हैं ना ये सहाबा कराम के अंदर ऐसे नहीं थे, बड़ा सिंपल सादा सा, भाई जो मिला खा लिया अल्लाह का शुक्र अदा किया, जो मिला पी लिया अल्लाह का शुक्र अदा किया, ठीक है ना, लोगों ने जो है वो कोई अच्छा मामला कर दिया अल्लाह का शुक्र अदा किया, लोगों ने बुरा मामला किया अल्लाह का सबर कर लिया, ठीक है। तो तकल्लुफ का उनमें नाम नहीं, अल्लाह ताला ने उनको अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुहबत व खिदमत के लिए मुंतखब फरमा लिया, तुम उन्हीं के अखलाक व आदात और तरीकों को सीखो क्योंकि वही सीधे रास्ते पर हैं। ठीक है, तो कुलूब पाक और इल्म गहरा, ये दो चीजें जो है ना, ये और तकल्लुफ फिर इनका जो है वो इनके जिमन में आ भी जाता है, इनके जिमन में ही आ जाता है, इनके इनके तहत ही आ जाता है। तो कुलूब पाक होना यानी यानी तकवा इख्तियार कर और इल्म की गहराई हासिल, सिर्फ हाई लेवल सुपरफिशियल इल्म नहीं, बल्कि ऐसा इल्म जो कि आपको जो है ना उसका इनसाइड आउट समझ में आता हो, फकाहत हो आपके पास उसकी, ठीक है ना। दावत तो तबलीग के लिए को सही कर तरीके से करने के लिए ना ये दोनों चीजें चाहिए होती हैं। जितना कल्ब पाक होगा और जितना इल्म गहरा होगा, उतनी जो है ना इंसान दावत का काम ज्यादा अच्छे तरीके से कर सके, ठीक है। तो कल्ब पाक करने के लिए जो है वो तकवा, ठीक है, यानी गुनाहों से बचना। इसी को अगर हम एक और एंगल से देखें, ठीक है, गुनाहों से बचना यानी तकवा इख्तियार करना यानी अपने कल्ब को पाक करना, अपने नफ्स का तज़किया करना, कल्ब की सफाई कहते हैं और नफ्स की का तज़किया कहते हैं, ठीक है ना। मकसूद दोनों का एक ही है, तकवा हासिल करना यानी गुनाहों से बचना, ठीक है ना। देखें इससे होता क्या है, जब इंसान तकवा इख्तियार करता है ना, तो उससे ये होता है कि वो इंसान फिर अला बिजिक्रिल्लाही तत्मइन्नुल कुलूब का मिस्दाक बन जाता है। अला बिजिक्रिल्लाही तत्मइन्नुल कुलूब, क्या मतलब, उसके कल्ब को इत्मीनान मिल जाता है, ठीक है ना, उसके कल्ब को इत्मीनान मिल जाता है, हत्ता के बसा औकात उसकी जो जिंदगी होती है ना वो ओवरऑल जिंदगी भी मुतमइन हो जाती है। अंग्रेजी के अंदर, ठीक है, क्योंकि हम हैं अंग्रेज दान, अंग्रेज हैं तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, तो अपनी इंग्लू लैंग्वेज के अंदर हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं कि वी के पर्सन हु अटेन्स तकवा ही स्टॉप्स बीइंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ही स्टॉप्स और शी स्टॉप्स बीइंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी वो मुसीबत का की वजह, बीइंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम का मतलब मुसीबत की वजह, मुसीबत का पेश खेमा, मुसीबत की जड़ होने से बच जाता है, रुक जाता है जो तकवा इख्तियार करता है, ठीक है। क्योंकि तकवा इख्तियार करने वाले के ऊपर अल्लाह ताला की रहमत आती है, अल्लाह ताला की मदद आती है, अल्लाह ताला उसको मुसीबतों से आजाद कर देते हैं, उसके ऊपर मुसीबतें आसान कर देते हैं, ठीक है ना। तो ही स्टॉप्स और शी स्टॉप्स बीइंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। व्हेन समवन स्टॉप्स बीइंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ओनली देन ही और शी इज एबल टू बिकम पार्ट ऑफ द सल्यूशन, बिकम पार्ट ऑफ द सल्यूशन। ये जो दावत और तबलीग का काम है ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू बीइंग पार्ट ऑफ द सल्यूशन, हल, इलाज, ठीक है। ये दावत और तबलीग क्या है, ये दीन की दावत देना, लोगों को दीन की तरफ बुलाना। दीन क्या है, मसलों का हल, हमारे इनफरादी मसलों का भी और हमारे इज्तिमाई मसलों का भी हल, हमारे दुनिया के मसलों का भी हल और हमारे कब्र के मसलों का भी हल और हमारे हशर के मसलों का भी हल और हमारे आखिरत के मसलों का भी हल, ठीक है ना, हर आलम के मसलों का हल वो दीन है। तो दिस इज कॉल्ड बीइंग पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमारी कोताही या हमारी अकल की खराबी क्या है कि वी वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन विदाउट विदाउट कमिंग आउट ऑफ आवर ओन प्रॉब्लम्स, राइट। हम तकवा इख्तियार नहीं करना चाहते, हम जो है ना वो दीन को सीखना नहीं चाहते, दीन को अपने जो है ना वो 5 फिट के जिस्म के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश नहीं करना चाहते, लेकिन हम पूरी दुनिया के अंदर दीन फैलाना चाहते, ये नहीं हो सकता भाई। यू आर स्टिल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, यू आर स्टिल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, आप कैसे किसी दूसरे का प्रॉब्लम हल करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक एक जाविया है इसको देखने का, कि दीन जो है ना ये सोल्यूशन के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है, और इस सोल्यूशन को वही लोगों तक पहुंचा सकता है जो कि खुद प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। हम तो खुद ही जो है वो सर खाते रहते हैं हर वक्त अपने मशायख का, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब सीखें भाई, नबी सहाबा भी दावत का काम भी करते थे, नबी अलैहिस्सलाम से सीखा भी करते थे, पूछा भी करते थे, लेकिन सर खाना जो है ना ये एक दूसरी बात है। सर खाने का मतलब ये होता है, ये मुहावरा सर खाने का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि बात समझा दी गई, आपकी इसलाह का रास्ता आपको बता दिया गया, लेकिन आप उस पे अमल करके नहीं दे रहे, आप जिद पे अटे हुए, आप अपनी अनानियत की वजह से जो है ना वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो आपके जो है वो मसले खत्म ही नहीं हो रहे, आपके मसले बल्कि उल्टे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं पहले के मुकाबले में, और हर वक्त जो है ना फिर वो वही पुराना रोना रो करके रोना रोते हुए आप फिर आ जाते हैं। तो इसको कहते हैं सर खाना, बिकॉज अदरवाइज इसके अंदर कोई फायदा नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ सर खाना कहते हैं, ठीक है ना। उस्ताद का सर खा रहे हैं, शेख का सर खा रहे हैं, डॉक्टर का सर खा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो मसले का हल है ना, मसले का सॉरी मसले का हिस्सा है ना आप, ठीक है ना, ये तो आप मसले का हिस्सा है। आपने क्या जो है वो दीन का काम किया, आपने क्या किसी को दूसरे को जो है वो मसले से बाहर निकलने का रास्ता बताया, ठीक है। तो ये एक बहुत अहम पॉइंट है, और फिर उसके बाद अगला अहम पॉइंट वो ये कि देखें नबी अलैहिस्सलाम और कुरान मजीद, ठीक है ना, वो दावत तो तबलीग का क्या तरीका बता रहे हैं, क्या तरीका बता रहे हैं। फरमा रहे हैं कह दीजिए हाज ही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन, ठीक है, अना व मन इत्तबान, मैं और वो जिन्होंने मेरी इत्तिबा करी। अब यहां पर मन किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, जिन्होंने थोड़ी बहुत भी अरबी पढ़ी हुई है वो जानते हैं कि मन का जो इसम मौसूला है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है जी। क्लास का कुछ भी फायदा होना चाहिए ना, वरना बयान में भी तो यही बातें हो रही होती हैं, लेकिन इसमें इंटरेक्शन कोई नहीं हो सकती। अब तो थोड़ी थोड़ी हमने शुरू करी है वैसे तो मन किसके लिए इस्तेमाल होता है, जो भी ये तो आपने तर्जुमा कर दिया ना, ये इस्तेमाल होता है जविल उकूल के लिए, ठीक है ना, जविल उकूल के लिए। और जो गैर जविल उकूल होते हैं उनके लिए क्या इस्तेमाल होता है, उनके लिए इस्तेमाल होता है माँ, ठीक है ना, माँ इस्तेमाल होता है। तो यहां पर किन यानी दावत और तबलीग के लिए कैसे मदद है? नबी अलैहिस्सलाम सलाम की मदद किसने करी या कैसे हुई, इंसानों के जरिए से नबी अलैहिस्सलाम सलाम की मदद हुई, या इंसानों ने नबी अलैहिस्सलाम के एक पैगाम को आगे फैलाया, ठीक है ना। आज हम किस जरिए से दावत और तबलीग करते हैं, हम आज तो जो दावत और तबलीग करते हैं ना हम मन के जरिए से नहीं करते, यानी ये वो अरबी इसम मौसूला वाला मन, हम माँ के जरिए से दावत और तबलीग करते हैं। माँ का मतलब क्या, गैर ज़वेल उकूल चीज़ों के जरिए से। आज कुदरतन ख़वातीन के क्लास में भी यही बात हो रही थी, ठीक है ना, कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो इंटरनेट है, ये जो फोन है, ये जो मीडिया है, ये सब का सब क्या है, ये माँ है, ये गैर ज़वेल उकूल चीजें हैं, बल्कि ये जमादात हैं, ये सारी की सारी चीज जमादात, ये हैवानात नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कंप्यूटर, ये जूम, जूम तो खैर हम डायरेक्ट क्लास के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये ट्विटर, ये सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर, ये सब क्या है, ये जमादात हैं ये सारे के सारे। इंसान तो क्या, ये हैवानात भी नहीं है, ये नबातात भी नहीं है, ये तो जमादात हैं। हमारी दावत और तबलीग आज के दौर के अंदर सोशल मीडिया के जरिए हो रही है, सोशल मीडिया टूल्स आर जमादात, नॉन लिविंग थिंग्स, ये सुन्नत तरीका नहीं है, ये सुन्नत तरीका नहीं है, सुन्नत तरीका है जिंदा इंसानों की मदद से दावत और तबलीग की जाए, इंसान तैयार किए जाएं और वो इंसान आगे जाकर के दावत का काम करें। ये नहीं कि किसी प्रिंट मीडिया के ऊपर जो है वो दावती पैगाम लिख दिया और उस प्रिंट मीडिया को जो है ना वो आपने मेल कर दिया। पहले जो है वो पोस्टल सर्विस के जरिए से मेल करते थे, अखबारात तो जराए तो रिसाले तो लेटर्स, राइट। अब जो है वो इसके जरिए से सोशल मीडिया के जरिए से दावत और तबलीग का काम हो रहा है ना। एक शेख साहब ने बड़ा अच्छा सा बयान किया, यूट्यूब के ऊपर उसको रिकॉर्ड करवाया, और फिर वो यूट्यूब जो है ना वो उसका चैनल बनाया, और चैनल जो है ना फिर सारी दुनिया में एक साथ नशर हो गया। दुनिया के कोने कोने से कोई भी शख्स जो है वो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है और सब्सक्राइब किए बगैर भी उसको सुन सकता है। ये दावत और तबलीग का तरीका सुन्नत तरीका नहीं, ठीक है ना। इससे क्या नुकसान होते हैं सुनिए, इससे नुकसान सबसे बड़ा ये होता है, दरमियान की जो एक लेयर थी ना इंसानों की, कि जिन्होंने अपने बड़े का पैगाम सीखना था और फिर आगे सिखाना था, इन लोगों को जो वास्ता बनना था ना बीच में, इससे इनका अपना कितना फायदा होना था। जितने लोगों तक ये पैगाम पहुंचाते, उनके नेक आमाल का सवाब इन सबको मिलता, इन सबको मिलता वो नेक आमाल का सवाब। जितने लोग इनकी दावत के ऊपर मुसलमान होते या नेकी की तरफ रागिब होते, इन सबको उसका सवाब मिलता। जैसे सहाबाए कराम को पूरी उम्मत की नेकियों का सवाब मिल रहा है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को जितने अशरा मुबशरा सहाबा और दूसरे सहाबा जितनी नेकियां करते हैं, हम जितनी नेकियां करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम को तो वो बाद में पहुंचती है, पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को पहुंचती है वो सारी की सारी नेकी, फिर ऊपर नबी अलैहिस्सलाम को पहुंचती है ना। ये तो पिरामिड सिस्टम है ना, ये तो वास्तों का सिस्टम है ना, पक्की ठक्की बात है हमारे दीन के अंदर। अब अगर बीच में से इंसानों के लेयर को आप निकाल दें और सिर्फ जो है ना वो एक मीडिया टीम बिठा दें, जिसको कि जो है ना वो वीडियो बनानी आती है, जिसको जो है ना वो व्हाट्सएप के ऊपर चैनल बनाना आता है, जिसको जो है वो कोई इस किस्म का टीवी का प्रोग्राम बनाना आता है, उस प्रोग्राम बनाने वाले ने, चैनल बनाने वाले ने, मीडिया टीम ने, आपका जो है वो शेख साहब हैं, बड़े अल्लाह के वली हैं, शेख हैं और शेखुल हदीस हैं और आलिम हैं और पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, उनकी जो है वो कैसेट बनाई, पहले कैसेट बनाते थे, फिर उसके बाद सीडियां बनानी शुरू करें, फिर उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चीजें बनानी शुरू करें, और फिर जो है वो पूरी दुनिया में वायरल कर दिया। अब दरमियान की जो वो लेयर थी वो तो एलिमिनेट हो गई ना, वो लेयर तो गायब हो गई बीच में से, ठीक है ना। तो कितने लोगों का भी नुकसान हो गया इससे, कि जो बीच के लेयर वाले लोग थे उनका नुकसान हो गया, वो तो थे ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। अब तो डायरेक्ट पहुंच रहे हैं ना वो मैसेज अवाम उन्नास तक, वो मैसेज डायरेक्ट पहुंच रहे हैं, वाया सहाबा तो नहीं पहुंच रहा, वाया जो सोहबत में रहने वाले लोग थे, जो शागिर्द थे, जो खुलफा थे, उनके वास्ते से पैगाम नहीं पहुंच रहा, ठीक है ना। तो इंसानों के लेयर को आपने एलिमिनेट कर दिया, और बीच में कौन सी लेयर डाल दी, जमादात की लेयर डाल दी, जमादात की लेयर, ठीक है ना। दैट्स वन बिग प्रॉब्लम विद दिस। अनदर बिग प्रॉब्लम के अब जो अवाम उन्नास ये पैगाम सुनेगी, तो क्या ये अवाम उन्नास जो है वो उन शेख साहब या उन जो है वो आलिम दीन साहब से उसका कोई डायरेक्ट वास्ता हो सकता है, कि वो अपनी जो गलत उसके जहन में शैतान कोई अंडरस्टैंडिंग डाल रहा है, तो क्या उस अंडरस्टैंडिंग को रिमूव करने के लिए वो डायरेक्ट शेख साहब को एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इल्ला माशाल्लाह, कौन कर सकता है भाई। पूरी दुनिया के लोगों तक जो है वो पैगाम तो पहुंच गया, लेकिन पूरी दुनिया के लोगों के लिए शेख साहब के पास टाइम मौजूद है, वो तो नहीं कर सकते, उनको तक एक्सेस ही नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो हाँ, आ रहे हैं आपकी वाली बात तक जी, इन्होंने माशाल्लाह सवाल कर लिया जिसके जवाब उन्हें देना ही था, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि शैतान को मौका मिल जाता है, इवन उलमाए हक का जो पैगाम है उसमें भी गलत अंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पर सबसे बड़े मुअल्लिम हक, उलमा को तो लफ्ज भी नबी अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल नहीं होता, नबी अलैहिस्सलाम के लिए तो मुअल्लिम का लफ्ज इस्तेमाल होता है, राइट। सबसे बड़े मुअल्लिम, उनकी जो हदीसें हैं, राइट, उनका पूरा का पूरा दीन का पैगाम क्या है, हदीसों के लेवल पर है या कुरान मजीद के लेवल पर। अब जो है वो कोई अवाम उन्नास में से उठ करके जो है वो बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और उनको डायरेक्टली पढ़ना शुरू हो जाए, और बीच में समझाने वाले, सिखाने वाले उलमा, राइट, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा से, ताबईन से, तबा ताबईन से, पूरे इस वास्ते से जिन्होंने इल्म हासिल किया, वो बीच की लेयर नहीं हो, अवाम उन्नास डायरेक्ट उठा करके बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ और हत्ता के कुरान शरीफ डायरेक्ट जो है वो पढ़ना शुरू कर दें बगैर तफसीर के, बगैर किसी वास्ते के, तो क्या होता है, फिर शैतान गुमराह करता है, हदीसों के दरमियान जो है वो तआरुज दिखाता है, हदीसों के दरमियान जो है वो और अजीब अजीब किस्म के मसले दिखाता है, ऐसी ऐसी हदीसें ऐसे ऐसे बना करके पेश करता है कि जिससे उस शख्स का ईमान ही खत्म हो जाता है। हालांकि कुरान मजीद पढ़ रहा है, नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें पढ़ रहा है, राइट, सबसे अफजल तरीन कलाम पढ़ रहा है, लेकिन नतीजा क्या निकला, या तो ईमान से महरूम हो गया या हदीसों का मुनकर हो गया कि भाई ऐसी चीजें कैसे कह सकते हैं नबी अलैहिस्सलाम। इसका मतलब यह है कि ये कहीं नहीं नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस का मुनकर बन गया, इनकार हदीस इसी तरह से तो शुरू होता है, क्या ऐसा नहीं है, राइट। जो लोग इस प्रॉब्लम से आगे बढ़ चुके हैं वो इस बात से एग्री करेंगे, जो लोग अभी तक इसी मसले में फंसे हुए हैं कि नहीं जी मेरी अकल काफी है हदीस को समझने के लिए और कुरान को समझने के लिए, ऑफ कोर्स उनका जवाब यही होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जो इससे नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं वो तो सब समझते हैं ना कि हाँ ऐसा ही है, मुनकर हदीस ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। तो अब जो है वो आज के जो स्कॉलर साहब हैं तो वो नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा अफजल है, वो कुरान मजीद अल्लाह ताला के कलाम से ज्यादा अफजल कलाम है उनका, जो कि यूट्यूब के ऊपर अपना प्रोग्राम डाल रहे हैं। भाई शैतान दरमियान में है और शैतान की एक्सेस हर इंसान तक है, शैतान की एक्सेस हर इंसान तक है, क्या नहीं है, कोई इनकार कर सकता है इसका, उसको तो ईमान ही खत्म हो जाएगा अगर वो इनकार करे, क्योंकि वो कुरान का इनकार बन जाएगा। ये नहीं, शैतान जो है वो जैसे हम कहते हैं ना अपने मखमसे के अंदर, मैं सबको शैतान गुमराह कर सकता है, मुझे ही नहीं गुमराह कर सकता क्योंकि मेरे तक तो एक्सेस ही नहीं है शैतान का, है ना। दूसरों के बच्चों को शैतान जो है ना वरगला सकता है, मेरे बच्चों को शैतान नहीं वरगला सकता क्योंकि मेरे बच्चे तक शैतान का एक्सेस कोई नहीं है, राइट। तो ये तो माओ की कहने की बातें हैं ना, लेकिन हकीकत ऐसी है क्या, शैतान का एक्सेस तो हर एक के पास है और हर एक के साथ जो है वो शैतान लगा हुआ है, हर एक के साथ शेख साहब तो नहीं लगे हुए, हर एक के पास शेख साहब का एक्सेस, शेख साहब के पास हर एक का एक्सेस तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये दूसरा बड़ा मसला, ठीक है ना। पहला बड़ा मसला जो कि सबसे बड़ा मसला तो शायद ये दूसरा वाला ज्यादा बड़ा मसला है, ठीक है ना, लेकिन वो क्या कि जी ये बीच की लेयर ही आपने खत्म कर दी, फिर उसके बाद जो है वो गलत फहमियां, जो शैतान गलत अंडरस्टैंडिंग डालता है उन लोगों के दिल में जो के बगैर पूछे बस सुन करके जो है वो अपना खुद ही नतीजा खस कर लेते हैं कि हाँ भाई शेख साहब ये कह रहे थे और शेख साहब वो कह रहे थे और ऐसे करना चाहिए और वैसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तीसरा बड़ा मसला कि जब इस तरीके से दावत का काम शुरू हो जाता है और इस तरह के, फिर अब किसी एक का तो नहीं पड़ा हुआ, हजारों का पड़ा हुआ है ना यूट्यूब के ऊपर और हर जगह, हजारों लाखों का पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब इससे क्या हो रहा है कि जो अवामुन्नास है उनके लिए तो कोई फोकस ही कोई नहीं, उनके लिए तो कोई फोकस ही नहीं, वो तो कभी इस शेख साहब को सुनेंगे, कभी दूसरे शेख साहब को सुनेंगे, कभी तीसरे मौलाना साहब को सुनेंगे, कभी चौथे जो है वो शेखुल इस्लाम साहब को सुनेंगे, कभी जो है वो शेखुल हदीस साहब को, फलाने मदरसे के वाले को सुन रहे हैं, कभी फलाने शेखुल हदीस साहब को सुन रहे हैं, कभी फलाने शेख, और ये तो खाली वो जो के कम अज कम अहले हक के अकीदे वाले, वरना तो कोई शेख वेख को भी नहीं सुनते, जो आ गया जिसका किसी ने भेज दिया सुनना शुरू हो गया उसको, चाहे उसके पीछे से कोई निस्बत नहीं है, चाहे उसके शयातीन के साथ निस्बत है, चाहे उसकी यहूदियों के साथ निस्बत है, कुछ पता ही कोई नहीं। तो इससे क्या होता है, इंतशार, ये जो सुनने वाले होते हैं जो कि अपने दीन का इल्म इस वास्ते से इस तरीके से हासिल कर रहे हैं, ये मुस्तकिल मुंतशिर रहते हैं, मुस्तकिल डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, ये कभी भी फोकस नहीं कर पाते, और जो कभी भी फोकस नहीं कर पाता वो जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन उसके लिए नुकसान का सबब बन रही होती है, फायदे का सबब नहीं बन रही होती है, राइट। कोई आ गया उसके जलसे में जा रहे हैं, कोई आ गया उसके जो है वो बयान में जा रहे हैं, कोई आ गया जो है वो उसकी मजलिस में जा रहे हैं, कोई आ गया जो है उसके इज्तिमा में जा रहे हैं, ये ऐसे शख्स कहीं भी नहीं होता, वो यकसू हो ही नहीं पाता, और जो यकसू नहीं हो पाता वो ऊपर तरक्की नहीं कर पाता, ठीक है। तो बहुत सारे इसके साथ मसले हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई आज हमारे मशायख, हमारे बड़े उलमा भी अपने बयानात को यूट्यूब पर डाल देते हैं, ठीक है ना, यूट्यूब पर भी डाल देते हैं और दूसरे, बल्कि हमारा अपना जो है वो वेबसाइट के ऊपर हमने डाला हुआ है, ठीक है ना, तो खुद जो है वो अमल, हमारा अमल जो है वो हमारी बात के खिलाफ हो गया, इसका मतलब हमने भी तो वेबसाइट पर डाला हुआ है, ठीक है। तो भाई इसका जवाब ये है कि ये जो हजरात ये वाला जो काम कर रहे हैं ना, ठीक है, जो YouTube को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस्तेमाल कर रहे हैं इनको बतौर किताब के, बतौर किताब के, ठीक है ना। जिस तरह से किताब उम्मत में हमेशा से लिखी गई, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत की खासियतों में से एक खासियत बताई कि इस उम्मत के अंदर किताब, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं, ये पिछली यानी आसमानी किताबों के अंदर इस उम्मत की सिफात में से एक सिफत यह है कि ये उम्मत किताबें लिखेगी, ठीक है ना। तो किताब क्या चीज होती है? ये इल्म को सेव करने वाली, रिकॉर्ड करने वाली चीज होती है, और इसके जरिए से जो है ना वो इल्म की चीज जो है वो उन हाथ, उन इतने हाथों में पहुंच जाती है जिन तक इंसान डायरेक्टली नहीं जा सकता, ठीक है ना, जिन तक इंसान डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बाकी लोगों में और इन मशायख के, ये जो किताबें बना रहे हैं, यूट्यूब किताबें बना रहे हैं, ऑडियो किताबें बना रहे हैं या वीडियो किताबें बना रहे हैं, इनके अमल में और दूसरों के अमल में फर्क क्या है? ये चले आप बता दें, सिवाय उन लोगों के जिनको, जिनके साथ पहले ये बात हो चुकी है, वो ना बताएं, ठीक है। तो बाकी बताएं कि फर्क क्या है फिर, ये भी तो फिर वही काम कर रहे हैं। चले किताब का नाम दे दें आप, वो भी यही काम, वो भी कह सकते हैं कि जी हम भी किताब का काम कर रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? नियत, नियत तो है ना, ये तो इतने कहते हैं ना सस्ते नहीं छूट सकते आप, इतना सस्ते नहीं छूट सकेंगे, ठीक है। नियत क्या, वो कहेंगे हमने भी ये नियत करी है, आप कौन होते हैं हमारी नियत के ऊपर शक करने वाले, है ना। नियत दिल का मामला है ना, तो हमने भी ये नियत करी है, उन्होंने भी ये नियत करी है, तो आप तो हमें हमारे पीछे पड़े हुए हाथ धो करके, और अपने शेख साहब को जाना, वो कहते नहीं उन्होंने अच्छी नियत करी है, हमने बुरी नियत करी हुई है, तो इतने सस्ते नहीं छूट सकेंगे, ठीक है। तो कोई और जवाब दें, लैक ऑफ निस्बत, चलें कोई और जवाब दें ना जो कि इस वाले सवाल से मुताल्लिक हो, ये बड़ों के इत्तबा के साथ कर रहे हैं, बड़ों के इत्तबा के साथ कर रहे हैं, ये भी एक हल्का जवाब है, वो कहेंगे वो हम भी बड़ों के इत्तबा के साथ कर रहे हैं, उनके बड़े कोई और होते हैं, ठीक है ना, चाहे जो भी है, लेकिन बड़ों की इत्तबा तो फिर होंगे, हम भी बड़ों के इत्तबा से कर रहे हैं भाई, ठीक है, मशाइख की निगरानी के साथ कर रहे हैं, वो बात सबूत से करते हैं, वो भी सबूत से करते हैं, सबके पास अपना अपना उल्टा सीधा ऊट पटांग किस्म के सबूत होते हैं, किसी की बात अच्छे होते हैं, किसी की बात बुरे होते हैं। बहरहाल फर्क जो है ना, चलें टाइम भी हमारा क्लास का पूरा हो चुका है, तो फर्क ये है, और ये फर्क होना लाजमी है, ये फर्क होना लाजमी है, अगर ये फर्क नहीं है तो फिर ये बहानेबाजी यानी चलेंगी कि जी हमारी नीयत अच्छी है, तो कहेंगे भाई हमारी नीयत का तुम्हें क्या मुसीबत है, ठीक है ना। इस वजह से फर्क होना, ये वाला फर्क होना लाजमी है, जैसे इन्होंने लिखा है इट इज नॉट द प्राइमरी सोर्स, ठीक है ना। उन्होंने जो हमारे मशायख हैं जो ये काम करते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड के लिए करते हैं, और उन लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए करते हैं जिन लोगों तक इनके बंदे पहले से पहुंचे हुए हैं या पहुंचने का काम कर रहे हैं। क्या मतलब कि ये जो लोग हैं ये सुन्नत की इत्तबा करते हुए बंदे तैयार करने के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, इनका फोकस किस चीज के ऊपर होता है? बंदे तैयार कर, और बंदों के जमन में बंदियां भी आ जाती हैं, औरतों में काम करने के लिए बंदियां तैयार करना, ठीक है ना। और ये है असल सुन्नत का तरीका, ये है नबी अलैहिस्सलाम का तरीका, और फिर एज अ सेकेंडरी ऑप्शन या एज अ सेकेंडरी सोर्स उसके लिए इसको रिकॉर्ड भी कर लेना, इसको जो है वो पहुंचा भी देना, लेकिन इट हैज टू बी अकम्पनीड बाय मेन एंड विमेन, ह्यूमन बीइंग्स, मन मन इत्तबानी, ठीक है ना। क्योंकि जो किताब के अंदर चीज होती है या वीडियो के अंदर चीज होती है या ऑडियो के अंदर चीज होती है, उसके साथ साथ एक एक्सप्लेन करने वाले की जरूरत होती है, एक उस्ताद की जरूरत होती है। ये ना सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, बल्कि ये और किसकी सुन्नत है, जल्दी से बताएं, ये किसकी सुन्नत है? ये क्या सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है? क्या ये सिर्फ सहाबा की सुन्नत है? ये अल्लाह की सुन्नत भी है, ये अल्लाह की भी तो यही सुन्नत है। अल्लाह ताला ने किताबें भी उतारी, लेकिन अल्लाह ताला ने अंबिया यानी जो किताब को सिखाने वाले, पढ़ाने वाले, और जो शैतान की गलत फहमियों को रोकने वाले, राइट, उनके ऊपर हमेशा ज्यादा एम्फेसिस रहा है, उनकी तादाद भी 1,24,000 रही है, किताबों की तादाद सिर्फ 5 रही है, और 5 के साथ ठीक है फिर बाकी जो है वो लोअर लेवल की किताबें थी, लेकिन किताबों के ऊपर एम्फेसिस हमेशा सेकेंडरी रहा है, किताबें रिकॉर्ड करने के लिए। हाँ, किताबों की अहमियत ये है कि खुदा ना खास्ता कोई रिजाल साहब जो है ना वो जरा खिसक गए तो उन्होंने कोई गलत बात कर दी, तो उसको फिर किताब से चेक किया जाएगा, किताब जो है वो सेफ रखी जाएगी। तो किताब के रिकॉर्डिंग वाला, रिकॉर्डिंग का मकसद ही ये होता है ना, ठीक है ना, टू प्रिजर्व समथिंग, राइट, उसको गलती से, उसको जो है वो गुमराही से, उसको जो है वो मिस यूज से जो है वो बचाने के लिए किताब के अंदर प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। तो भाई ये है तरीका, तो इस तरीके लिए के लिए भाई फिर सब तैयार है ना भाई, तश्कील करेंगे, हाथ उठाए, सही है, और माशाल्लाह जूम के अंदर तो रेज हैंड का ऑप्शन भी है, सब तैयार है ना भाई, जो जो तश्कील के लिए तैयार है सब हाथ उठाए, हाँ इनशाला, जिसने कोई काम नहीं करना होता नाउज बिल्ला, तो आजकल के मुसलमानों का ये मामला है इनशाला, ठीक है, अगर अल्लाह ने चाहा तो करेंगे, वरना मेरा कोई इरादा नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल ये मजाक की बात ही खाली, हकीकत से ताल्लुक नहीं है, यकीनन हमारे दिल की तमन्ना अल्लाह ताला जानते हैं कि हम इसके लिए अपने आप को तैयार करना, तो इसके लिए याद रखें, इसके लिए पहली शर्त यह है कि दीन को अपने 5 फुट के या 6 फुट के जिस्म के ऊपर लागू करने की कोशिश करना इखलास के साथ, और इससे क्या होगा, वी विल स्टॉप बीइंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, वी विल स्टॉप बीइंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, अल्लाह की मदद आएगी, देन वी विल बी एबल टू बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको, हमारी औलादों को, आने वाली नस्लों को, हमारे घर की औरतों को, बच्चियों को, माओं को, बहनों को, सबको कबूल फरमा दे, इसके लिए सबको तौफीक अता फरमा दे कि हम इस दीन को अपने ऊपर भी लागू करें और इसको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपना फर्ज अंजाम दें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।